परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से निकाल कर दिया है जीवन नया। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वह निकाल कर दिया है जीवन नया। हालेलुया हा 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 हालेलुया, हालेलुया हा 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 हालेलुया, हालेलुया हा 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 हालेलुया, हालेलुया हा 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 हालेलुया। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। हम पापी थे, पाप की मजदूरी मृत्यु थी, पर यीशु की कृपा से जीवन प्रदान की। हम पापी थे, पाप की मजदूरी मृत्यु थी, पर यीशु की कृपा से जीवन प्रदान की। कैसा महान प्रेम उसने हम पर किया, हम उसको दे धन्यवाद। जीवन मिली मसीह हालेलुया हा 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 हालेलुया, हालेलुया हा 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 हालेलुया, हालेलुया हा 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 हालेलुया, हालेलुया हा 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 हालेलुया। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। जो मसीह ने उस पर दंड नहीं है, मसीह के लहू से सब माफ किया है। अब जो मसीह ने उस पर दंड नहीं है, मसीह के लहू से सब माफ किया है। मसीह के राह पर हम चलते रहे, किया है हमको आजाद। जीवन मिली हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वह निकाल कर दिया है जीवन नया। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। हालेलुया हा 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 हालेलुया, हालेलुया हा 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 हालेलुया।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य से अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का दास यूहन्ना हमें परमेश्वर की उन बातों को किस रीति से बताता और समझाता है। तो मेरे प्रियो, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम आपके वचन में से सुनना और सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा, आप उनकी सहायता कीजिए ताकि हर एक वचन जो आज वे सुनते हैं हर एक के जीवन में कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए ताकि वे सच्चाई को जानकर आपकी महिमा कर सकें। आज के अध्ययन पर अपनी आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, मैंने आपसे कहा कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। पतमुस टापू में यूहन्ना ने इस वाणी की ओर मुंह किया तो देखा कि 7 सोने की दीवटों के मध्य प्रभु यीशु खड़ा है। दीवटों का अर्थ है कलीसियाएं और उनमें जो तेल है वह पवित्र आत्मा है जो हमारा महायाजक प्रभु यीशु कलीसियाओं में उंडेलता है कि हमारी ज्योति चमके। परंतु यदि हमारी बत्ती धुआं देती है तो वह उसे बुझा देगा। यह एक अत्यंत भयानक बात है। परंतु यदि वह हमारी बत्तियों को कष्टों द्वारा छांटे तो वह अच्छा है क्योंकि हमारी ज्योति बढ़े। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 14 और 15 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। मेरे प्रियो, लिखा है उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे। यह उसके अनंत अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। दानियेल नबी की पुस्तक 7 अध्याय के 9 पद में लिखा है, अति प्राचीन, उसे अति प्राचीन कहा गया है। और तब यहां देखते हैं, उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। यह उसकी सर्वज्ञानी दृष्टि और संपूर्ण कलीसियाई जीवन के आंखों देखे ज्ञान का वर्णन है। वह मेरे बारे में सब कुछ जानता है। वह मंदिर में बैठकर श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में दान देने वालों को भी देख रहा था। पिछले रविवार वह आपको चंदा अर्थात भेंट चढ़ाते हुए देख रहा था। आप सोच रहे थे कि चंदा देते हुए आपको किसी ने देखा तो नहीं। उसने पतरस को भी उसका इनकार करते समय पलट कर देखा था और पतरस फूट फूट कर रोया था। काश आज आप अपने उद्धारकर्ता की आंखों को देखें। मेरे मित्रों, वह हमें देख रहा है, वह आपको इस समय देख रहा है। आगे कहता है, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे। पीतल दंड का प्रतीक है। मिलाप वाले तंबू की पीतल की वेदी पृथ्वी पर प्रभु यीशु के काम क्रूस की मृत्यु का प्रतीक थी। उसने आपके और मेरे पाप के दंड को भोगा। अब वह हमें जो उसके हैं परख करके देख रहा है। जापान में पहला और दूसरा परमाणु बम गिराने वाले सेनापति ने पाश्चात्य सैनिक संगठन की कड़ी आलोचना की कि वे यूरोप की सुरक्षा में तत्परता नहीं निभा रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि वे अमेरिका के प्रति उदासीन हो गए। क्यों? क्योंकि मनुष्य आलोचना सुनकर रुष्ट हो जाता है। मानवीय प्रवृत्ति यह है कि न्याय का विरोध करे। मनुष्य छोटे छोटे नियम निर्देशों का पालन करना चाहता है। यही कारण है कि मसीही जन अनेक पाठ्यक्रमों का अनुसरण करते हैं। उन्हें अनुग्रह के जीवन की अपेक्षा विधि विधान का जीवन अधिक अच्छा लगता है। उन्हें आप पालन करने हेतु कुछ नियम दें तो वे अति प्रसन्न होते हैं। उन्हें मैं कहता हूं टूटी हड्डी को टेप से जोड़ने वाले लोग। क्यों? क्योंकि उन्हें सराहना अच्छी लगती है और खरी बात बुरी लगती है। यह मनुष्य का स्वभाव है। मेरे प्रियो, यही कारण है कि आज की प्रभु यीशु की आज की स्थिति और उसकी निगरानी की सेवा को हम अनदेखा करते हैं। प्रभु यीशु कलीसिया में न्याय के स्थान पर है और वह मीठी मीठी बातें नहीं करता है। वह किसी बात को देखकर आंखें बंद नहीं करता है। वह पाप और गलत काम को अनदेखा नहीं करता है। वह अपनों को लगातार मन फिराव की चुनौती देता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आगे चलकर हम यही देखेंगे। वह कलीसिया को चेतावनी देता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु की इस चेतावनी को कलीसियाएं पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि उनके मन गुनगुने हैं। लौदीकिया की कलीसिया प्रभु यीशु की इस चेतावनी पर बहुत कम ध्यान दे रही थी। किसी ने कहा, एक मनुष्य महिमा में है परंतु कलीसिया ने उसे अनदेखा किया हुआ है। तब आगे हम पढ़ते हैं, उसका शब्द बहुत जल के समान था, अर्थात उसकी वाणी अधिकार प्रकट करती थी। यह वही शब्द था जिसे सुनकर जगत की उत्पत्ति हुई और इसी शब्द को सुनकर उनके अनुयायी जो कब्रों में सोते हैं खड़े होंगे और यही शब्द उन्हें अपने साथ पृथ्वी से उठाकर ले जाएगा। मेरे प्रियो, ये सब रूपक हमारे महायाजक प्रभु यीशु को चित्रित करते हैं कि वह कलीसिया की निगरानी करते हुए उसका लेखा रख रहा है। अपने महायाजक पर ध्यान दो। परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करेगा कि आप उसे उसकी संपूर्ण महिमा और सुंदरता में देखें। वह कैसा महान है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 16 पद में आगे लिखा है, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। ध्यान दीजिए, लिखा है वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, अर्थात वह इस जगत का कर्ता धरता है। आगे कहता है, और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। मुझसे किसी ने पूछा, आप क्या सोचते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, धर्मशास्त्र के अनुसार तलवार परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। देखिए, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा परखता है। वह आज भी वचन ही से परखता है। जब वह वचन कहता है तब उचित होगा कि आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि वह काम की बातें करेगा। आगे लिखा है, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। इतनी तेज धूप में आप सूरज को देख भी नहीं पाते हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि आप सूरज के सृजनहार परमेश्वर को देख सकते हैं? महिमामय प्रभु यीशु मसीह को आप देख सकते हैं? वह वास्तव में कैसा महान है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय के 17 पद में लिखा हुआ है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मेरे प्रियो, यूहन्ना प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप से जानता था। अंतिम भोज के समय वही तो प्रभु यीशु के सीने पर सिर रखे हुए था। वह प्रभु यीशु के इतना निकट था कि एक बार तो उसने प्रभु यीशु को झिड़क भी दिया था। परंतु पतमुस टापू पर जब वह महिमामय प्रभु यीशु का दर्शन पाता है, तब वह न तो उसके निकट जा पाया और न ही उससे बात करने का साहस जुटा पाया। वह उसके पांव में गिर पड़ा। प्रभु यीशु के दर्शन के प्रभाव ने उसे जड़ बना दिया था। मेरे मित्रों, जब यूहन्ना की प्रतिक्रिया ऐसी थी, तो हम जब यीशु की उपस्थिति में होंगे तो हम उसके साथ परिचित व्यवहार करने का साहस कभी नहीं जुटा पाएंगे। हम तो उसके पांव में गिर जाएंगे। वह आज महिमामय मसीह है। मैं स्पष्ट कहता हूं कि मैं सहमत नहीं कि हमें प्रभु यीशु के विषय में या उसके साथ मित्रता का व्यवहार रखना है। न ही मैं किसी से सुना पसंद करता हूं कि प्रभु यीशु उसका मित्र है। आप कहेंगे कि मैं रुष्ट स्वभाव का व्यक्ति हूं। जी हां, मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 14 पद में प्रभु यीशु कहता है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। जी हां, यदि आप प्रभु यीशु को अपना मित्र कहते हैं, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। ओह मेरे मित्रों, यदि हम उसे उसकी संपूर्ण महिमा और विभव में देख लें, तो उसके साथ अनौपचारिकता नहीं निभाएंगे। परंतु सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह कहता है, मत डर। यह परमेश्वर द्वारा मनुष्य को साहस दिलाना है। वह चार कारण बताता है कि हम क्यों डरे नहीं। आइए हम देखें। पहला है, मैं प्रथम और अंतिम हूं। वह परमेश्वर है। वह समय के पहले से आया है और समय के अंत तक और उसके बाद तक रहेगा। भजनकार कहता है भजन संहिता 90 के 2 में, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। अनादि काल का अर्थ है बीते हुए समय के विलोपन बिंदु तक, और अनंत काल का अर्थ है भविष्य के विलोपन बिंदु तक। वह परमेश्वर है। वह प्रथम है क्योंकि उससे पहले कोई नहीं था, और वह अंतिम है क्योंकि उसके बाद कोई नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 18 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। दूसरी बात वह कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, अमर जो मर गया है परंतु अब जी उठा है, यह उसकी उद्धारक मृत्यु और पुनरुत्थान का बोध कराता है। हम में से बहुतों में दोषी अंतःकरण होता है। हमारे मन में एक डर बसा रहता है कि कोई हम पर उंगली उठाकर कहेगा तू अपराधी है। निसंदेह हम हैं, परंतु पौलुस हमें ढाड़स बंधाते हुए कहता है रोमियो के पत्री 8 अध्याय के 34 पद में, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और मसीह की दाहिनी ओर अर्थात परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमें अपराधी कहता है? पौलुस कहता है कि मसीह हमारे लिए मर गया। क्या आप मुझ पर दोष लगाएंगे? क्या आप मुझे पापी कहेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मसीह यीशु मेरे लिए मेरे पापों के लिए मर गया और फिर जी उठा। वह मुझे धर्मी ठहराने के लिए जी उठा कि प्रकट करे कि मुझे क्षमा मिल गई है, और एक दिन मैं स्वर्ग जाऊंगा और वह परमेश्वर की दाहिनी ओर है। यह कैसी अद्भुत बात है! और वह मेरे लिए मध्यस्थता करता है, प्रार्थना करता है। यह हम उसके द्वारा दिए गए अगले कारण को देखते हैं। मेरे प्रियो, तीसरी बात है जिसके लिए हमें नहीं डरना है, कहता है कि मैं युगानुयुग जीवता हूँ। यह उसकी आज की स्थिति है। वह हमारा न्याय ही नहीं करता, वह हमारे लिए प्रार्थना भी करता है। हमें इसकी कैसी आवश्यकता है। तब वह कहता है चौथी बात, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। प्रभु यीशु इस पल मृत्यु और अधोलोक पर अधिकार रखता है। यह उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के कारण है। अधोलोक का मूल अर्थ है अप्रत्यक्ष संसार, जिसका अर्थ कब्र और आत्माओं का स्थान भी हो सकता है। मेरे प्रियो, हम इस बात से शांति पाते हैं कि प्रभु यीशु के हाथ में मृत्यु की कुंजी है। वह हमें मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है। रहस्यमय बातों का समय विभाजन देखते हैं। निम्नलिखित पद हमें समय के तीन काल क्रमों में ले चलते हैं, पूर्व काल, वर्तमान काल और भविष्य में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का विभाजन प्रस्तुत करते हैं तीन भागों में। अभी तो मैं यह विभाजन अपनी समझ से प्रस्तुत कर रहा हूं, परंतु जब हम अध्ययन में आगे बढ़ेंगे तब मैं दिखा पाऊंगा कि यह सच है। आइए हम देखें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक अध्याय उसका 19 पद लिखा है, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। यहां पर हम विभाजन में पहली बात देखते हैं, जो बातें तूने देखी हैं। अब तक यूहन्ना ने क्या देखा? उसने महिमामय मसीह यीशु को देखा था। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यह पुस्तक मसीह केंद्रित है। इसका विषय है महिमामय मसीह यीशु। अतः आप घुड़सवारों, कटोरों और पशुओं पर ध्यान न दें, वे तो एक निकलता हुआ दृश्य है। अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर लगाएं, वही है जो था और रहेगा, कल आज और युगानुग रहने वाला वही है। यूहन्ना को उसका दर्शन लिखकर व्यक्त करना था। दूसरी बात हम देखते हैं, जो बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही है? वे बातें जो कलीसिया से संबंधित हैं। आज भी 2000 वर्ष बाद कलीसिया से संबंधित बातें अध्याय 2 और 3 में व्यक्त की गई हैं। तीसरी बात हम देखते हैं, जो बातें इसके बाद होने वाली हैं। यह प्रभु यीशु की योजना है। मेरे प्रियो, हम देखेंगे कि कलीसिया स्वर्ग में है और कलीसिया के प्रस्थान के बाद पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं का वर्णन किया गया है। प्रभु यीशु की यह योजना अध्याय 4 से 22 में दर्शाई गई है। अब हम देखेंगे 7 सितारों और 7 दीवटों का अर्थ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसका 20 पद, जो इस अध्याय का अंतिम पद है, लिखा है, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने के दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7ों कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। यूहन्ना प्रतीकों का उपयोग स्पष्ट करता है और उनका अर्थ समझाने में भी हमारी सहायता करता है, ताकि हम उसे अच्छी रीति से समझ सकें। इसकी अपेक्षा वह प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करता है, वह वास्तविक बातों की चर्चा करता है। कहता है उन 7 तारों का भेद और उन 7 सोने के दीवटों का भेद। मेरे प्रियो, यहां वरन संपूर्ण धर्मशास्त्र में भेद का अर्थ है उन बातों का पवित्र रहस्योद्घाटन जो पहले प्रकट नहीं थी। यूहन्ना पर प्रकट की जाने से पूर्व वे कभी प्रकट नहीं की गई थी। ये वे बातें हैं जो यूहन्ना ने देखी थी। एकमात्र वही था जिसने महिमामय मसीह यीशु को देखा था। अब आप कहेंगे कि पौलुस ने भी तो प्रभु यीशु का दर्शन देखा था। पौलुस ने क्या देखा था? सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति देखी थी। प्रेरितों के काम 26 अध्याय के 13 पद में लिखा है, मेरे प्रियो, मैं सूर्य को सीधा नहीं देख सकता, और मेरे विचार में पौलुस मसीह यीशु को उसकी संपूर्ण महिमा में देख नहीं पाया होगा, परंतु वह यह जान गया था कि वह ज्योति प्रभु यीशु की थी। उस ज्योति में, या कहें कि उस ज्योति के कारण वह अंधा भी हो गया था। अतः यूहन्ना पहला मनुष्य था जिसने महिमामय मसीह यीशु को देखा। लिखा है, 7 सितारे 7 स्वर्गदूत हैं। सितारा अधिकार का प्रतीक है। यहूदा की पत्री पद 13 में विधर्मियों को भटकते हुए सितारे कहा गया है। दूत से अभिप्राय है संदेशवाहक, अब वह चाहे स्वर्गिक प्राणी हो या मनुष्य। इसका अर्थ स्वर्ग की सेना का संदेशवाहक या शासक या पृथ्वी पर कलीसिया का शिक्षक भी हो सकता है। मेरा अपना विचार है कि वह 7ों कलीसियाओं के पास्टरों के विषय में कह रहा है, जैसा हम अगले 2 अध्यायों में देखेंगे। मेरे मित्रों, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी पास्टर को स्वर्गदूत कहा जाए, क्योंकि कभी कभी उन्हें कुछ और कहा जाता है। अतः यदि आप बुरा ना माने तो मैं यही अर्थ अपनाना चाहता हूं। आगे कहता है, वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। ये 7 कलीसियाएं एशिया की कलीसियाएं हैं, परंतु यह संपूर्ण कलीसिया का प्रतीक भी हैं। कलीसिया जो मसीह की देह है और हम जो उसके अंग हैं। मेरे मित्रों, आज हमारे लिए अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वह हमें देखता है, वह हमें जांचता है, वह हमारी सहायता करता है और हमें बताता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, और वही युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज की इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन पर आपको और अधिक ध्यान करने में सहायता करे, ताकि आप इसमें और अधिक बलवंत होने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
मैंने अपना मन ईश्वर को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन ईश्वर को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन ईश्वर को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन,
निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई।